दिन भर रविवार 23 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात टली लेकिन बयानों का सिलसिला अब भी जारी।
मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तो बातचीत करना चाहता था और भारत की सोच प्रारंभ से यही रही है कि जो पड़ोसी देश हैं पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर होने चाहिए।
झारखंड में आंदोलन करने निकले हजारों शिक्षक रांची पहुंचे, वेतन बढ़ाने और नौकरी पक्की करने की मांग। फैला उजियारा में आज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और उनके योगदान की कहानी।
There's a lot in the Aryabhatiya which is fun and ingenious.
भारत के खिलाफ 18 रन बनाकर कुमार संगकारा ने लिया क्रिकेट से संन्यास। खबरें होंगी और भी लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक रद्द होने के बाद बयानबाजी जारी है। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रद्द होने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद एजेंडे से भटकते हुए रद्द की है। पाकिस्तान जहां कश्मीर मुद्दे को एजेंडे में शामिल करना चाहता था, वहीं भारत ने कहा कि कश्मीर पर बात नहीं हो सकती है। लेबनान के प्रधानमंत्री तमाम सलाम ने राजधानी बेरूत में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कार्रवाई करने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को सज़ा दिलवाने का वादा किया है। बेरूत में महीने भर से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जिनमें पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस, पानी की बौछारें और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अल जजीरा चैनल पर कहा कि वो किसी को भी कानून से बचने नहीं देंगे। जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की जिससे लोगों को नुकसान हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इस घटना को लेकर इन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और ये हर स्तर पर होगा। कल की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। ये थे लेबनान के प्रधानमंत्री तमाम सलाम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस में आए तूफान की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तूफान गोनी अब धीमा पड़ गया है और हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं। तूफान अब जापान की ओर बढ़ गया है जहाँ दक्षिण र्यूक्यू द्वीपों पर तूफान की मार का असर देखा जा सकता है। यमन में बंदी बनाए गए एक ब्रितानी नागरिक को रिहा कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की मदद से चलाए गए एक खुफिया ऑपरेशन के बाद इस ब्रितानी नागरिक को छुड़ाया जा सका है। इसकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई जा रही है और ये एक तेल कंपनी के लिए काम करता था। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इसका नाम डगलस रॉबर्ट सिंपल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अलकायदा ने इसका अपहरण कर लिया था। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इसके रिहाई की पुष्टि कर दी है। मलेशिया की पुलिस ने दावा किया है कि थाईलैंड की सीमा के नज़दीक के इलाके में उसे फिर से सामूहिक कब्रें मिली हैं। बुकित वांग बर्मा नाम की जगह पर मिली कब्रों में 24 लाशें बरामद हुई हैं। माना जा रहा है कि लाशें मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों की है। तस्कर म्यांमार और बांग्लादेश से लाए गए लोगों को आगे ले जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने कहा है कि बरामद लाशों की जाँच की जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता तो टल गई लेकिन बयानों का सिलसिला अभी जारी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत बातचीत करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान ने उफा में बनी सहमति का उल्लंघन किया।
जो पाकिस्तान ने वार्ता निरस्त की है मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तो बातचीत करना चाहता था और भारत की सोच प्रारंभ से यही रही है कि जो पड़ोसी देश हैं पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और हम लोगों का प्रयत्न तो बराबर रहेगा। लेकिन उफा में जिस समय भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई थी तो जो एजेंडा तय हुआ था उस एजेंडा से पाकिस्तान को डेविएट नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ही वार्ता निरस्त की है, भारत ने वार्ता निरस्त नहीं की।
लेकिन पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है। कह रहा है कि हुर्रियत लीडर से नहीं मिलने दे रहे हैं जबरदस्ती।
नहीं, बात तो केवल यह हुई थी कि एनएसए स्तर की जो वार्ता होगी उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं रहेगा। यह तो एनएसए स्तर की वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच तय थी, उसमें अन्य लोग भी आकर उसके पहले बात होगी, बाद में बात होगी, उसमें बैठकर बात होगी, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ।
उधर पाकिस्तान इस बातचीत के रद्द होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ ही अपने देश में विपक्षी दलों की भी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड इनटू इट्स हैंड्स बाय बीइंग इम्प्रिसाइज, बाय बीइंग अनप्रिपेयर्ड, बाय लैकिंग फोकस।
भारत सरकार उनके हाथों में खेल रही है। तैयारी न होने, ध्यान की कमी, अनौपचारिक तरीके से काम करने, जमीनी स्तर पर पहले से ठीक से तैयारी न करने के कारण पुरानी प्रचलित कूटनीति को नुकसान हुआ है। हमें दुख है कि बातचीत टल गई और उसके कारण पिछले 10 सालों से ज्यादा समय में जो कुछ हासिल हुआ था वो सब गंवा दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के शब्द। उधर श्रीनगर में भी माहौल थोड़ा गर्म है। आज सुबह अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर जमा हुए 200 से ज्यादा लोगों को हटाने के लिए पुलिस को पानी की तेज बौछार और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। बातचीत रद्द हो जाने के बाद गिलानी विरोध जताने के लिए अपने घर पर ही एक सेमिनार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यह सेमिनार नहीं होने दिया। गिलानी पिछले 4 महीनों से अपने घर में नजरबंद है। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। इधर रांची में वेतन बढ़ाने और सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर झारखंड राज्य के 80,000 पारा शिक्षक यानी शिक्षा मित्र आंदोलन की राह पर हैं। हजारों की संख्या में ये शिक्षक शनिवार से राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। रांची के मोराबादी मैदान में डेरा जमाए इन शिक्षकों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की वजह से इन शिक्षा मित्रों की बहाली की गई है। फिलहाल 41,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में करीब 80,000 शिक्षक काम कर रहे हैं। इन्हें मानदेय के रूप में 6 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है। क्या है पूरा मामला और आंदोलन कैसा चल रहा है ये बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
शनिवार से ही हजारों की संख्या में शिक्षक रांची में जमे हैं। रांची के मोराबादी मैदान में डेरा डाले इन शिक्षकों ने जुलूस भी निकाला। वे मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रोक लिया। हालांकि मुख्यमंत्री से शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता भी हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। संघ के सचिव संजय दुबे कहते हैं,
हम लोग आपको पहले भी बताए, कल भी बताए कि पारा शिक्षक इस बार आर पार की लड़ाई में है, और आर पार की लड़ाई सिर्फ मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है।
राज्य में 41,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 80,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर अन्य सरकारी कामकाज में इन शिक्षकों की अहम भागीदारी है। शिक्षकों को बतौर मानदेय 6 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं। उनका कहना है कि यह राशि मजदूरी से भी कम है।
एक राजमिस्त्री जो काम करता है उसका पेमेंट है 500 रुपया, 15,000 रुपए महीने में कमाता है, लेकिन हम लोग सरकार सारा काम करवा रही है, जनगणना करवा रही है और आपको बिलों का काम करवा रही है, इसके बावजूद इलेक्शन करवा रहे हैं, इसके बाद भी जो है हम लोग को सरकार जो नहीं सुन रही है। हम लोग 1,000 से स्टार्टिंग किए हैं, आज हम लोग को 6,000 रुपया, 6,500 रुपया मिल रहा है। बताइए अभी हम लोग इस पैसा से क्या होने वाला है। हम लोग अपने मांग को लेकर आए हैं, तो मांग को लेकर के जाएंगे, चाहे 10 दिन रहना पड़े या 20 दिन रहना पड़े या 50 दिन रहना पड़े, हम लोग अपना मांग को पूरा करवा कर जाएंगे।
खुले आसमान के नीचे रात बिताने को विवश इन शिक्षकों को कई परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उनके बीच सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है।
कह रहे सर कि हम लोग का परेशानी इतना है कि यहाँ मोरवादी मैदान में जब हम लोग 11 बजे दिन से जुटे हुए हैं और यहाँ पर पानी का भी प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, खाने पीने का भी प्रॉब्लम है। हम लोग आरम से तक गए हैं पानी के लिए, वहाँ खाना के लिए गए, वहाँ होटल बंद पड़ी, सबसे प्रॉब्लम हो रहा है। खाली
गांव-गांव से शिक्षकों का राजधानी पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। विनोद यादव का दावा है कि 60,000 लोग अब तक रांची पहुँच चुके हैं।
60,000 लोग आए हैं, बीवी बाल बच्चों के साथ आए हैं, और यह लड़ाई लंबी चलेगी और यहाँ से मांग वेतन मान लेकर जाएंगे।
क्या मांग क्या है?
हमारा मांग है वेतन मान और 60 वर्ष के स्थायी नौकरी।
पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर राज्य की शिक्षा मंत्री नीरा यादव कहती हैं कि पिछले साल इनका मानदेय बढ़ा था, इस साल भी बढ़ेगा। जहां तक उनकी सेवा स्थायी करने की बात है तो इस पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी।
2014 में लोगों का मानदेय बढ़ाने की बात की थी, बढ़ाया गया है। 2015 में भी मानदेय बढ़ाने की बात हम लोगों ने कहा है और 15 में भी बढ़े हैं, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। और जहाँ तक स्थायीकरण की बात है तो उससे हम लोग सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी और हम और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ एक बैठक है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे।
शिक्षकों के आंदोलन की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ने वाला है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस मामले को लेकर शोरगुल होने के आसार हैं। सबकी नज़र सरकार के फैसले पर है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार के 3 साल में तो खामोश बैठी रही, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो विपक्षी दल है और फिर इसके साथ ही शुरू हो गई है धरना प्रदर्शन की राजनीति। कांग्रेस पार्टी इन आंदोलनों के जरिए क्या राज्य में अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है या फिर कोई और बात है? इस बारे में लखनऊ से हमारे सहयोगी अतुल चंद्रा ने ये रिपोर्ट भेजी है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई मामलों में समाजवादी पार्टी के सहारे की मोहताज रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो विपक्ष की भूमिका निभाने पर आमादा है। गत सोमवार को लखनऊ में पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस की लाठियां झेली। इस आए परिवर्तन को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर ने कुछ इस तरह समझाया।
हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और स्थिति यह है कि जब राज्यसभा का मामला था तो समाजवादी पार्टी ने हमें समर्थन दिया था, जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद का मामला था तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। तो वो कड़वाहट और मिठास नहीं, वो सिद्धांतिक बात थी, एक राजनीतिक एडजस्टमेंट थे। परंतु बात यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में इतनी बिगड़ चुकी है कि एक आम आदमी कराह उठा है और हम विपक्ष में बैठे हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी हमें निभानी है। जनता क्या सोचेगी कि हम उनकी आवाज ना उठाएं? क्या हम यदि हम उनसे मुस्कुरा के बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनके मुंह पे कड़वी बात ना करें?
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंधों को दूसरी तरह से देखते हैं। वो इसे कांग्रेस की छटपटाहट बताते हैं।
देखिए, दुविधाग्रस्त कांग्रेस का जो राज्य नेतृत्व है वो अपने वजूद के लिए छटपटा रहा है। इसी वजूद के लिए छटपटाहट में यादव सिंह पर जब कपिल सिब्बल पैरवी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है तो उससे छोड़ने की और उससे पीछा छुड़ाने की कवायद है, आपने देखा नहीं? क्योंकि राहुल और सोनिया समाजवादी पार्टी की कृपा पर संसद बने हैं, इसलिए इतने पिटने के बावजूद राहुल जी देखने नहीं आए उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। ये उनकी अपनी छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रतिपक्ष के नाते सर्वाधिक सरकार के खिलाफ मुखर है और जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा जनता उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है। अब यह संकट राज्य नेतृत्व का है और उस अंतर्द्वंद और छटपटाहट में इस तरह के कवायद हो रही है।
प्रदीप माथुर ने तो इतना कुछ कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया, अरे कांग्रेस के बारे में कुछ मत कहलाइए। तो क्या दोनों दलों के बीच ये नूरा कुश्ती हो रही है?
उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल के रूप में सक्रिय हुई कांग्रेस पार्टी, रिपोर्ट सुना रहे थे अतुल चंद्रा। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर निखिल रंजन के साथ, और अब बात फैला उजियारा की। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर सुनील खिलनानी इनकार्नेशंस की आज की कड़ी में महान गणितज्ञ खगोल खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के जीवन और विरासत की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण काम किया। सुनिए फैलाव जियारा की 7वीं कड़ी, आर्यभट्ट, प्रस्तुत कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
ये कोई 40 साल पहले की बात है जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 19 अप्रैल 1975 वो दिन जब भारत ने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया।
3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4,
ये भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण था। जो इस बात का प्रमाण था कि भारत आधुनिक हो चला है। लेकिन इस उपग्रह को 1500 साल से भी पुराना नाम दिया गया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम पश्चिमी जगत में वैसे मशहूर नहीं था जैसे यूक्लिड और टॉलमी का, लेकिन भारत में आर्यभट्ट एक उपग्रह मात्र नहीं था, वो दरअसल वैज्ञानिक प्रेरणा का दूसरा नाम था। वो आर्यभट्ट जिसने 5वीं सदी में गणितीय और खगोलीय ज्ञान को पहली बार चरणबद्ध तरीके से एक जगह एकत्रित किया, वो भी केवल 23 साल की उम्र में। उनके विचारों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिन्होंने इस्लामी खगोल विज्ञानियों और गणितज्ञों को खासा प्रभावित किया। हालांकि पश्चिमी जगत के समकालीन गणितज्ञों से आर्यभट्ट का कोई संपर्क नहीं था, यही वजह थी कि आर्यभट्ट के विचार वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक खोजों में सीधे तौर पर योगदान नहीं दे पाए और धीरे धीरे भारतीय जनमानस ने भी उन्हें भुला दिया। लेकिन जब आधुनिक भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने नन्हे कदम बढ़ाने शुरू किए, तब आर्यभट्ट के नाम को दोबारा प्रतिष्ठा हासिल हुई और पश्चिमी तकनीक में प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी जड़ों को टटोलना शुरू किया। प्रोफेसर यू आर राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अग्रणी वैज्ञानिक हैं, जिनकी देखरेख में भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था।
आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके नाम ने हमें अपने अतीत का स्मरण कराया और रुचि भी जगाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था।
आर्यभट्ट की संपूर्ण प्रतिष्ठा उनकी एक रचना पर टिकी है जिसका नाम है आर्यभटीय। संस्कृत में रची गई ये कृति आर्यभट्ट की एकमात्र रचना है जिसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है। इसकी भाषा वैज्ञानिक पहेली नुमा है। उदाहरण के तौर पर कॉपरनिकस और गैलीलियो से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने यह तर्क दिया कि पृथ्वी एक गोले की तरह है जो अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट के पास हमारा आधुनिक हेलियोसेंट्रिक मॉडल तो नहीं था जिसने ये विचार आगे बढ़ाया कि पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये विचार अपने आप में काफी क्रांतिकारी विचार था जिसने उन वैज्ञानिकों को झकझोर कर रख दिया जो खगोल शास्त्र के पश्चिमी विद्वानों की तरह पृथ्वी को चपटा और आसमान को घूमता हुआ मानते थे। लेकिन आर्यभट्ट के सिद्धांत को वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान से जोड़ना आसान नहीं था, इसलिए आर्यभट्टीय के बाद के संस्करण को उन्होंने बदल दिया और इसे त्रुटि सुधार का नाम दिया क्योंकि वो इसे आर्यभट्ट की भूल मानते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्यभट्टीय से उसके लेखक के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हालांकि आर्यभट्ट ने बताया है कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन इसे भी उन्होंने गणितीय पहेली की शक्ल में लिखा है जिसे हल करने पर जवाब मिलता है 476 ईस्वी। न्यूयॉर्क के यूनियन कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर किम फ्लोफकर आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय के बारे में काफी कुछ जानती हैं।
There's a lot in the Aryabhatiya which is fun and ingenious.
आर्यभट्टीय में ऐसा बहुत कुछ है जो मजेदार है, बहुत शानदार है। आर्यभट्ट भारत के उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके साथ काम करना मुझे लगता है बड़ा मजेदार रहा होगा, खास तौर पर तब जब आपके भीतर छात्र मौजूद हो जो उन्हें समझ सके, क्योंकि वे बहुत ही रचनात्मक, निर्भीक और मौलिक दिमाग वाले व्यक्ति थे। लेकिन जहाँ तक संस्कृत खगोल विज्ञान और गणित की बात है, वे इस परंपरा की शुरुआत करने वाले नहीं थे। वे जिस तरह की गणनाएं कर रहे थे वो तो सदियों पहले हो चुकी थीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परंपरा में आर्यभट्ट ने अपना अहम योगदान दिया है।
जहाँ तक आर्यभट्ट उपग्रह का सवाल है, ये बताना जरूरी है कि इसमें रूसी वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे आर्यभट्टीय में भी आर्यभट्ट कहीं ये दावा नहीं करते कि उनके विचार नितांत मौलिक विचार हैं। आर्यभट्ट एक लेखक के तौर पर अपनी भूमिका को बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं।
ब्रह्मा की कृपा से मैंने सच्चे ज्ञान के डूबते मोती को बचाया। इसमें मेरी बुद्धि ने नाव की भूमिका निभाई जो समुद्र में तैर रही थी, जिसमें सच्चा और झूठा दोनों तरह का ज्ञान समाया है।
आर्यभट्ट ने अपने इसी ज्ञान के बूते गणित की कई जटिल समस्याओं को आसान बना दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात यानी कि पाई की लगभग लगभग सही गणना की। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हुए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक आधार पर समझाया और भारतीय ज्योतिष विज्ञान को एक तरह से आधार प्रदान किया। ग्रहों की दशा दिशा का अनुमान लगाने के लिए आर्यभट्ट ने जिन तकनीक का इस्तेमाल किया उन्हीं तकनीकों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों का सही समय जानने के लिए किया गया। ज्योतिष का यही ज्ञान भारत में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। बात फिर चाहे काम धंधा शुरू करने की हो या शादी ब्याह की।
द कमिंग ईयर इज वेरी गुड ईयर एंड दिस ईयर 2015 इज आल्सो गुड ईयर बट आफ्टर मे यू गेट ए लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन दिस ईयर।
दिल्ली के एक ज्योतिषी सुबोध भारद्वाज कहते हैं,
इन इंडिया एस्ट्रोलॉजी इज ए मेन सब्जेक्ट बिकॉज वी बिलीव।
भारत में ज्योतिष एक प्रमुख विषय है क्योंकि हम इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान मानते हैं। इसके दो हिस्से हैं, पहला गणित और दूसरा भविष्यवाणी। अच्छे ग्रहों का अच्छा असर होता है और बुरे ग्रह हमेशा बुरा या नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं।
प्राचीन यूनान के दार्शनिक अरस्तु का भी विचार था कि ग्रह पृथ्वी पर होने वाली हलचल को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के मामले में टॉलमी ने भी अपनी राय रखी है और बहुत मुमकिन है कि भारतीय विचारों का उन पर भी असर पड़ा हो। गणित को उन्होंने बेहद व्यावहारिक रूप में सामाजिक तौर पर उपयोगी बताया। वैसे पश्चिमी परंपराओं में गणित ज्ञान रूपी पिरामिड के शिखर पर विराजमान है, लेकिन भारत में संभवतः ऐसा नहीं है जहां गणितीय तार्किकता को ज्ञान का महज एक प्रकार माना गया, जिसे भाषा और व्याकरण से ऊपर नहीं माना गया जैसा कि पाणिनि ने दिखाया। आर्यभट्ट की गणितीय अवधारणा कहीं कहीं आपको बेहद जटिल लगेगी, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसे छंदों में लिखा गया है और कविता की तरह से अभिव्यक्त किया गया है। गणित वो भी कविता की तरह। इसकी वजह यह है कि आर्यभट्ट का संबंध ज्ञान की मौखिक परंपरा से है और वो चाहते थे कि इसे आसानी से याद रखा जा सके। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने संख्याओं के साथ ध्वनियां जोड़ी ताकि बड़ी बड़ी संख्याओं को शब्दों में याद रखा जा सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर क्रिस्टोफर मिनकांस्की कहते हैं,
He is unique in the concision with which he expresses his text.
लंबी चौड़ी गणनाओं को संक्षिप्त तरीके से कहने के मामले में आर्यभट्ट जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये उनके बारे में बड़ी रोचक बात है जो एक तरह से भारत की बौद्धिक परंपरा रही है। आर्यभट्ट तमाम तरह के गणितीय विचारों को कविता की तरह कह जाते हैं। दशमलव कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन वृत्त, कोण समकोण जैसी जटिल गणितीय धारणाओं को वे संस्कृत के छंदों में महज 32 कड़ियों में पिरो देते हैं।
और क्या आपको लगता है कि आर्यभट्ट एक तरह से पौराणिक पात्र बन गए हैं?
I would say that there's a great deal of pride in some of these early accomplishments.
मैं कहूंगा कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और वैज्ञानिक एक तरह से महान गौरव का एहसास कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी विद्वानों ने उनकी अनदेखी की है, या कहें कि दुनिया भर में विज्ञान के इतिहास में भारतीयों ने जो योगदान दिया है उसे पश्चिमी विद्वानों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया।
यूक्लिड और गणित की पश्चिमी परंपरा की तरह आर्यभट्ट ने परिणाम या सिद्धांत प्रतिपादित करने पर अधिक बल नहीं दिया है। परिणाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको अपने काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इस तथ्यपरक व्यावहारिक दृष्टिकोण का मतलब है आर्यभट्ट की तार्किकता का अनुसरण करना अक्सर कठिन होता है, भले ही कोई उनके नतीजों से कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के यूनियन कॉलेज में प्रोफेसर किम फ्लोफकर,
यूक्लिड इज मोर लाइक मॉडर्न मैथमेटिक्स बिकॉज
यूनान के यूक्लिड थोड़े ज्यादा आधुनिक गणितज्ञ लगते हैं, क्योंकि आधुनिक गणित जो आजकल हम करते हैं वो मूल रूप से यूनानी ही है। सिद्धांत, समस्या, प्रमाण और ढांचे के हिसाब से देखें तो आधुनिक गणित यूनानी गणित जैसा ही है, लेकिन आर्यभट्ट के गणित के मामले में ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट ने गणित के लिए अपने अलग ही नियम बनाए।
महान वैज्ञानिक न्यूटन से आर्यभट्ट की तुलना करना रोचक होगा। न्यूटन ने अपनी बात बेहद सरल लैटिन भाषा में कही। लैटिन संस्कृत की तरह नहीं थी जिसे भारतीय गणितज्ञों ने इस्तेमाल किया। न्यूटन ने अपने विचारों को समीकरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जिससे गणित की एक विश्वव्यापी भाषा विकसित हुई। जो संस्कृत की परंपरा के हिसाब से शायद कभी संभव नहीं होता। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण महज आतिशबाजी नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था, लेकिन ये आंशिक रूप से ही सफल हुआ। अंतरिक्ष में 5 दिन बिताने के बाद इससे संकेत मिलने बंद हो गए, लेकिन एक उपग्रह के तौर पर आर्यभट्ट की टिकाऊ सफलता ये थी कि इसने भारत की वैज्ञानिक सोच वाली धरोहर को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की। इस उपग्रह ने गणितज्ञ के तौर पर आर्यभट्ट के योगदान की याद भी ताजा की। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब आर्यभट्ट के योगदान को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यभट्ट ने न्यूटन से 1000 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। इस तरह की धारणाएं और भी हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन ये मिथ्या धारणाएं इस ओर भी इशारा करती हैं कि हमें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के प्रति ऐतिहासिक तौर पर अधिक सतर्क और सटीक होने की आवश्यकता है। विज्ञान और गणित से जुड़ी जितनी भी पांडुलिपियां मिली हैं, उनमें से केवल 10% को ही प्रकाशित किया जा सका है। अधिकतर पांडुलिपियों का गंभीरता से अध्ययन आज तक नहीं हुआ है।
हेलो उजियारा का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग इसे इस बार नहीं सुन सके हैं वो मंगलवार सुबह विश्वभारती में इसे दोबारा सुन सकते हैं। और अब खेल समाचार।
जी निखिल, अगर खेल समाचार में कुमार संगकारा की बात की जाए तो आज उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला, आखिरी पारी खेली। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन आज जब श्रीलंका के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए 413 रनों का लक्ष्य है, तो कुमार संगकारा अपनी अंतिम पारी में 18 रनों का योगदान दे सके। वो आर अश्विन की गेंद पर मुरली विजय के हाथों लपके गए। उल्लेखनीय है कि इस सीरीज में हर बार आर अश्विन ने ही कुमार संगकारा को आउट किया, यानी चौथी बार उनका विकेट लिया। वैसे कुमार संगकारा ने अपने 134 टेस्ट मैचों में 319 रनों के सर्वाधिक स्कोर के साथ 12400 रन बनाए, जिसमें 38 शतक और 11 दोहरे शतक शामिल हैं। वैसे तो ढेरों रिकॉर्ड हैं जिन पर घंटों कार्यक्रम में चर्चा हो सकती है, लेकिन अपने सुनने वालों को बता दें कि आज इससे पहले भारत की दूसरी पारी 8 विकेट पर 325 रन के जब स्कोर था तब विराट कोहली ने समाप्ति की घोषणा की। वैसे आज अजिंक्य रहाणे ने 125 रनों की शानदार पारी खेली। उधर ओवल में अभी ताज़ा समाचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया है और एक पारी और कुछ रनों के अंतर से बड़ी हार है। लेकिन आज सबकी निगाहें बीजिंग में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर भी टिकी थी, जहां दूसरे दिन जमैका के यूसेन बोल्ट ने दिखा दिया कि वो इस धरती के सबसे तेज धावक हैं। उन्होंने आज 100 मीटर की दौड़ 9.79 सेकेंड में पूरी की और स्वर्ण पदक भी अपने गले में डाला। हालांकि उन्हें अमरीका के जस्टिन गैटलिन से कड़ी चुनौती मिली। गैटलिन ने बोल्ट से केवल 0.1 सेकेंड का अधिक समय लेते हुए 9.80 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता। लेकिन मतलब बोल्ट
की बादशाह अभी कायम है जी, और गिल्टिन को अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आदेश इस पूरे खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में प्रमुख समाचार सुनते हैं एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक रद्द होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये बातचीत भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने खुद एजेंडे से भटकते हुए रद्द कर दी है। फिलीपींस में आए तूफान की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमन में बंदी बनाए गए एक ब्रितानी नागरिक को रिहा कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की मदद से चलाए गए खुफिया ऑपरेशन के बाद इसे छुड़ाया जा सका है। मलेशिया की पुलिस ने दावा किया है कि थाईलैंड की सीमा के नजदीक के इलाके में उसे फिर से सामूहिक कब्रें मिली हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।